नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। बुधवार को होने वाली केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग में कई अहम फैसलों पर मुहर लग सकती है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में सरकारी कर्मचारियों को भी दिवाली से पहले खुशखबरी मिल सकती है। दरअसल इस बैठक में सरकारी कर्मियों को महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी पर मुहर लग सकती है। अगर इस फैसले पर मुहर लग गई तो डीए 42% से बढ़कर 46% हो जाएगा। इसका लाभ सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा। जानकारी के अनुसार अगर 4% डीए बढ़ा तो ये 1 जुलाई 2023 लागू किया जाएगा। बढ़ा हुआ डीए नवंबर की सैलरी में जुड़कर मिल सकता है। इसके साथ ही जुलाई से अक्टूबर तक का बकाया भी जोड़कर मिलेगा। इस फैसले से 47 लाख सरकारी कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। भारत ने अभी 14वें हिंद प्रशांत आर्थिक ढांचे के व्यापार स्तंभ में शामिल होने के मुद्दे पर कोई फैसला नहीं किया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बुधवार को ये जानकारी दी। IPEF एक 14 सदस्यीय समूह है। अमेरिका और एशिया प्रशांत के अन्य भागीदार देशों ने 23 मई को टोक्यो में IPEF की शुरुआत की थी। इन 14 IPEF भागीदारों का वैश्विक GDP में 40% हिस्सा है। इसी तरह वैश्विक वस्तु एवं सेवा कारोबार में समूह की हिस्सेदारी 28% की है। ये ढांचा व्यापार, आपूर्ति श्रृंखला, स्वच्छ अर्थव्यवस्था और निष्पक्ष अर्थव्यवस्था से संबंधित 4 स्तंभों के आसपास टिका है। व्यापार को छोड़कर अन्य 3 स्तंभों में भारत शामिल हो गया है। सदस्य देश इन विषयों पर अलग अलग समझौतों पर हस्ताक्षर के लिए बातचीत कर रहे हैं। आपूर्ति श्रृंखला को जुझारू बनाने पर बातचीत पहले ही पूरी हो चुकी है और भारत में इस करार के लिए घरेलू स्तर पर अनुमोदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कमजोर वैश्विक मांग, रियल एस्टेट क्षेत्र में संकट और अविस्फीतिक दबाव के बीच चीन की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर में चालू साल की 3री तिमाही में गिरावट आई है। 3री तिमाही में चीन की अर्थव्यवस्था 4.9% की दर से बढ़ी है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की आर्थिक वृद्धि दर 3री तिमाही में 4.9% रही है, जो विश्लेषकों के 4.5% के अनुमान से अधिक है। हालांकि पिछले साल की समान तिमाही के आंकड़े से चीन की वृद्धि दर सुस्त पड़ी है। पिछले साल समान तिमाही में चीन की अर्थव्यवस्था 6.3% की दर से बढ़ी थी। तिमाही आधार पर 3री तिमाही में चीन की वृद्धि दर 1.3% रही है, जबकि अप्रैल जून तिमाही में ये 0.8% रही थी। चालू साल के पहले 9 माह में चीन की अर्थव्यवस्था 5.2% की दर से बढ़ी है। चीन ने 2023 के लिए आर्थिक वृद्धि का लक्ष्य 5% का रखा है। वित्तीय सेवा विभाग के सचिव विवेक जोशी ने मंगलवार को निजी क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनियों के CEO के साथ एक बैठक में इस क्षेत्र के विकास एवं वृद्धि से जुड़े मसलों पर चर्चा की। वित्त मंत्रालय ने बयान में कहा कि इस बैठक में साधारण बीमा क्षेत्र से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई है। इसमें राज्य बीमा योजनाओं के तहत राज्यों के साथ सतत संपर्क बनाए रखते हुए जागरूकता बढ़ाने और बीमा का प्रसार एवं पहुंच बढ़ाने के मुद्दे भी शामिल थे। बैठक में साधारण बीमा उद्योग के लिए एजेंसी माध्यम को खोलने में वितरण चैनल को तर्कसंगत बनाने के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय बनाने पर भी चर्चा हुई। इसके अलावा मोटर वाहन अधिनियम का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के साथ मिलकर एक विशेष अभियान चलाने पर भी विचार किया गया। दिल्ली में बाइक टैक्सी सेवाओं के लिए रास्ता खुल गया है, लेकिन अब इन सेवाओं के लिए इलेक्ट्रिक 2-पहिया वाहनों का इस्तेमाल करना होगा। राष्ट्रीय राजधानी में यात्री परिवहन सेवाएं और डिलीवरी सेवाएं मुहैया कराने वाले एग्रीगेटर के विनियमन और लाइसेंस के लिए बनाई गई एक योजना में ये बात कही गई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को इस योजना को मंजूरी दी। एक आधिकारिक बयान के अनुसार दिल्ली मोहन वाहन एग्रीगेटर और डिलीवरी सेवा प्रदाता योजना 2023 से संबंधित फाइल अब उपराज्यपाल कार्यालय को भेजी गई है। केजरीवाल ने कहा, आज मैंने ऐतिहासिक दिल्ली मोटर वाहन एग्रीगेटर और डिलीवरी सेवा प्रदाता योजना को अपनी मंजूरी दी। ये दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इसके साथ दिल्ली भारत का पहला राज्य केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, जहां एग्रीगेटर, डिलीवरी सेवा प्रदाताओं और ई कॉमर्स कंपनियों के वाणिज्यिक वाहनों को 0 उत्सर्जन वाले इलेक्ट्रिक वाहनों में समयबद्ध तरीके से बदलना अनिवार्य है। विमानन कंपनियों एयर इंडिया, विस्तार और स्पाइसजेट के प्रमुखों ने मंगलवार को नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ एक बैठक में हिस्सा लिया। सिंधिया के कार्यालय ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में ये जानकारी दी। इस बैठक की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर जारी की गई। इसके मुताबिक एयर इंडिया, विस्तार, स्पाइस जेट और इंडिगो के प्रतिनिधियों ने ऋण शोधन अक्षमता एवं दिवाला संहिता के दायरे से विमान कलपुर्जे को स्थगन से छूट देने के लिए हाल ही में किए गए संशोधन के लिए सिंधिया का आभार जताया। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक मीनेश शाह को अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन के बोर्ड में शामिल किया गया है। NDDB ने बयान में कहा कि शाह को 15 अक्टूबर को IDF की आम सभा की बैठक के दौरान चुना गया था। ये जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए शाह ने कहा कि वैश्विक दूध उत्पादन में 23% से अधिक का योगदान देने वाले भारत के प्रतिनिधि के रूप में IDF के बोर्ड में एक अधिक समावेशी और बेहतर वैश्विक डेयरी पारिस्थितिकी तंत्र सुनिश्चित होगा। विस्तार से पढ़ने के लिए आएं जनसत्ता.com पर। नमस्कार।